आमोस अध्याय 7। परमेश्वर ने आमोस को दर्शन में अपना न्याय दिखाया, जिसके अनुसार वो इसराइल पर अपना दंड लाने जा रहा था। ये सब आमोस को दर्शन के द्वारा दिखाया गया था। आमोस अध्याय 7 पद 1 और 2। परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की और वो राजा की कटनी के बाद पिछली घास थी, जब वे घास खा चुकी। इन टिड्डियों ने देश की सारी हरियाली को खा डाला। जैसा उसने दर्शन में देखा, टिड्डियां आई और सारी हरी फसल को नष्ट कर दिया। आमोस अध्याय 7 पद 2 और 3। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वो कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। ये हमारी सीमित भाषा के कारण है, जिससे हम परमेश्वर के कार्यों को अपनी भाषा में दर्शाना चाहते हैं। और जब हम मानव भाषा के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को दर्शाते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर के साथ भी वही प्रतिक्रिया होती है जैसी हमारे साथ होती है। शब्द जिसका अनुवाद पछताना किया गया है, अच्छा होता यदि उसका अनुवाद दुखी होना होता। परमेश्वर दुखी हुआ। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो मनुष्य का पुत्र है कि पछताए। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी अध्याय 3 पद 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। लेकिन जब हम मनुष्य की रीति पर परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, तब कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर ने जो कार्य आरंभ किया था, उसके साथ बना नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर के कार्यों को मनुष्य की रीति पर बताना पड़ता है, क्योंकि मैं भाषा से बंधा हुआ हूं जो मनुष्यों की समझ में आती है। मुझे मनुष्यों की भाषा में कहना पड़ता है, परमेश्वर बदल गया। मानो उसने अपना इरादा बदल दिया। परमेश्वर कभी अपना इरादा नहीं बदलता। गिनती अध्याय 23 पद 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम परमेश्वर के कार्यों को दर्शनों के लिए मानव भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे समस्या आती है। मुझे शब्दों की आवश्यकता होती है कि घटनाओं का वर्णन करूं, तो मुझे मनुष्य की भाषा काम में लेनी होगी। परंतु परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करने के लिए मनुष्य की भाषा पर्याप्त नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि टिड्डियां खेती को नष्ट कर रही है। परमेश्वर द्वारा उस राष्ट्र को दंड देने का ये एक तरीका हो सकता था। जब उसने भूखी टिड्डियों को देखा, खेत को नष्ट होते देखा, तब वो परमेश्वर की मध्यस्थता के लिए चिल्लाया, ओ परमेश्वर, ऐसा मत कर, क्षमा कर, मैं विनती करता हूं। और परमेश्वर पछताया और टिड्डियों की महामारी नहीं भेजी। यहां हमें इस बात पर ध्यान देना है कि नबी लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। ये सच में सराहनीय है। जब हम योना और निनवे के विषय अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे कि योना का स्वभाव कितना विपरीत है। परमेश्वर ने निनवे का नाश नहीं किया था, इसलिए वो नाराज हो गया था। मध्यस्थता करने से दूर वो परमेश्वर को चुनौती दे रहा था कि निनवे को नाश करे। वो मुंह टेढ़ा करके बैठ गया और परमेश्वर से कहने लगा, तू उनको मारना नहीं चाहता तो मुझे मार दे, प्रभु मैं जीवित रहना नहीं चाहता। यहां परमेश्वर का नबी मध्यस्थता कर रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि नबी लोगों के लिए मध्यस्थता करें। आपको परमेश्वर के न्याय की घोषणा करनी है जो आने वाला है, परंतु हमें तब भी मध्यस्थता करनी है। हम ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर तू दुष्ट लोगों से निपटेगा। यदि तुम अपनी दुष्टता में बने रहो तो इसका फल आवश्यंभावी विनाश होगा। अपनी दुष्टता से फिरो। ओ परमेश्वर, उनके हृदयों में काम कर, उन्हें बदलने में सहायता कर। और इस प्रकार हम मध्यस्थता करते रहते हैं। बहुत से लोग नबियों को गलत समझते हैं जब वे परमेश्वर के आने वाले दंड की घोषणा करते हैं, जैसे वे परमेश्वर के दंड पर आनंदित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहां आमोस परमेश्वर के न्याय की घोषणा कर रहा है जो आना है, लेकिन वो फिर भी मध्यस्थता करता है। ओ परमेश्वर, क्षमा कर, प्रभु वे संख्या में थोड़े हैं, वे कैसे फिर से उठ पाएंगे यदि इस तरह मिटा दिए गए तो। फिर उसने एक दर्शन देखा, आग शहर को खा गई। वो फिर क्षमा के लिए मध्यस्थता और प्रार्थना करता है। ठीक है, वे आग से नष्ट ना किए जाएंगे। आमोस अध्याय 7 पद 7 और 8। उसने मुझे ये भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। वे इतने दुष्ट हो गए कि परमेश्वर ने साहुल लगाया ताकि सीधी दीवार बनाए। साहुल का काम सीधे किनारे और सीधी दीवार बनाने में सहायता करना है। परमेश्वर ने साहुल लगाया कि वो उनकी दुष्टता और भ्रष्टता देख सके। आमोस अध्याय 7 पद 9। मैं अब उनको ना छोड़ूंगा, इसाक के ऊंचे स्थान उजाड़। ये वे स्थान है जो उन्होंने बाल और अस्तोरोत की पूजा के लिए बनाए थे। आमोस अध्याय 7 पद 9 में आगे लिखा है, और इसराइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, जहां वे बछड़े चढ़ाते तथा देवी देवताओं की पूजा करते थे। आमोस अध्याय 7 पद 9 के अंत में लिखा है, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। मैं यरोबाम के घराने के विरुद्ध तलवार लाऊंगा। आमोस अध्याय 7 पद 10। तब बेतेल के याजक अमसिया ने, ये परमेश्वर का याजक नहीं था, परंतु बेतेल में धार्मिक कार्यों का पुजारी था। आमोस अध्याय 7 पद 10 और 11। इसराइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इसराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। इसलिए ये याजक आमोस की भविष्यवाणी से चिंतित हो गया और यरोबाम को संदेश भेजा, इसके बारे में तुम कुछ करो, हम इन वचनों को सह नहीं सकते, वे ठीक तुम्हारे देश के बीच में हैं और तुम्हारे ही विरुद्ध बोलता है, उसने तुझसे राजद्रोह की घोष्टी की है। आमोस अध्याय 7 पद 12। और अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी। नबियों को अधिकतर दर्शी पुकारा जाता था क्योंकि उनके पास दर्शन देखने और आत्मिक संसार में देखने की योग्यता होती थी। आमोस अध्याय 7 पद 12 में आगे लिखा है, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, जहां से आया है वही लौट जा। वो यहूदा के दक्षिण प्रांत के तकोई से था जो बैतलहम के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। आमोस अध्याय 7 पद 12 से लेकर 17 तक। और वही रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बैतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और ना भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छाटनेहारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इसराइल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन, तू कहता है कि इसराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंदुआई में जाएगा। परमेश्वर ने साहुल से खींचकर एक रेखा ठहरा दी थी, खरे मनुष्य बच जाएंगे और जो टेढ़े हैं नष्ट किए जाएंगे, जो रेखा से बाहर है नाश किए जाएंगे। इसलिए आमसाया, तू रेखा से टेढ़ा है, तू नाश किया जाएगा, तेरा परिवार नाश होगा और तेरी पत्नी सड़कों पर वेश्या हो जाएगी। आमोस इस याजक को जो उसके अधिकार को चुनौती दे रहा था कहता है, तेरा अभिषेक किसने किया, तुमने कहां से शिक्षा पाई है। ऐसी चुनौतियों आज परमेश्वर के कार्य करने वालों को मिलती है। किसने तुम्हारा अभिषेक किया, किसने तुम्हें अधिकार दिया, किस बाइबल स्कूल से तुमने शिक्षा प्राप्त की। ये इसलिए होता है कि हमारी एक गलत धारणा है कि बाइबल स्कूल की शिक्षा ही मनुष्य को सेवा करने का अभिषेक प्रदान करती है। सच्चाई से कुछ भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर केवल सेवा के लिए मनुष्य का अभिषेक करता है। बाइबल स्कूल की शिक्षा लाभप्रद हो सकती है, परंतु परमेश्वर के पास केवल अभिषेक है। बहुत से जवान सेवक जो कलवरी से सेवा आरंभ करने दूसरे स्थानों में गए, उनके पास बाइबल स्कूल की शिक्षा का अभाव है, इसलिए उन्हें चुनौती मिलती है, विशेषकर जब उनकी कलीसिया बढ़ती है और शहर में सबसे बड़ी कलीसिया बनती है। लेकिन किसने तुम्हारा अभिषेक किया है, किसने तुम्हें अधिकार दिया, आप जानते हैं वे क्या कह सकते हैं, मैं नशे का आदि था, उस दशा में परमेश्वर ने मेरे जीवन को पकड़ा और मेरे जीवन को बदल दिया, अब मैं सुसमाचार वाहक हो गया। आमोस, तू कहां से आया है, तुम्हें किसने अधिकार दिया, कौन सा बाइबल स्कूल है। आमोस ने कहा, देखो मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छाटनेहारा था, और यहोवा ने कहा, जा भविष्यवाणी कर, कोई प्रशिक्षण नहीं, केवल परमेश्वर की बुलाहट। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी ऐसी ही चुनौतियां मिली थी। जब यूहन्ना जंगल में प्रचार कर रहा था, फरीसी उसके पास आकर कहने लगे, किसने तुझे बपतिस्मा देने का अधिकार दिया। उन्होंने यीशु को भी चुनौती दी थी। उन्होंने यीशु से कहा, किसने तुम्हें ये सब करने का अधिकार दिया। यही सोचकर मुझे हंसी आती है जब आज भी लोग आकर कहते हैं, किसने तुम्हें अधिकार दिया, किसने तुम्हारा अभिषेक किया, जबकि ये प्रकट है कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक किया था और उसे बुलाया था। ये स्वीकार करना मनुष्य के लिए कठिन है कि परमेश्वर अपने कार्यों के लिए अधिकतर साधारण लोगों को बुलाता है। हम उन लोगों के ऊपर जिसे परमेश्वर ने प्रयोग किया है ज्योति चक्र लगाते हैं, सम्मान देते हैं और उन्हें एक महान संत समझने लगते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि वे लोग विशेष जन हैं, साधारण मनुष्य नहीं। वे मनुष्य और स्वर्ग दूतों के बीच में हैं। वे लोग साधारण नहीं जैसा हम सोचते हैं। वे सदा सिद्ध उत्तर देते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और ना विचलित होते हैं। वे सिद्ध होते हैं और इसलिए परमेश्वर उन्हें प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर साधारण मनुष्यों का प्रयोग करता है। एलिया हमारी तरह सुख दुख भोगी व्यक्ति था। उसमें और हमसे कोई फर्क नहीं था। आमोस चरवाहा था, वो गाय बैल चरा रहा था। जब प्रभु ने उससे बातें की और उसे अपने कार्यों के लिए बुलाया। परमेश्वर के पास हम सबके जीवनों के लिए एक योजना और उद्देश्य है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक काम है, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के कार्यों के लिए अनुपयोगी बनाते हो। पर परमेश्वर, मेरे पास तो शिक्षा नहीं है, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर, तू मुझे कैसे प्रयोग कर सकता है? और आप अपने आप को अनुपयोगी बनाते हैं। आप साधारण हो और सोचते हो परमेश्वर साधारण मनुष्य का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि आप शंकालु हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर शंकालु लोगों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि आप कमजोर हो और सोचते हो कि परमेश्वर कमजोरों का प्रयोग नहीं करता। परमेश्वर साधारण लोगों को ही काम में लेता है। परमेश्वर आपका प्रयोग करेगा। परमेश्वर आपका प्रयोग करना चाहता है। जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया वे अचंभित होते हैं और अपने लिए बहाना बनाते हैं, क्योंकि वे साधारण मनुष्य थे। जब परमेश्वर गिदोन के पास आया, वो दाकरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी इसी शक्ति में जा और इसराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ा। गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, क्या तू नहीं जानता? मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। प्रभु, मैं एक साधारण लड़का हूं, मैं तो गेहूं झाड़ रहा था। प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रभु, तुझसे अवश्य कोई गलती हुई है, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं जानता हूं तुझे महापुरुषों से ही प्रयोजन होता है। परंतु परमेश्वर ने गिदोन को चुना और अपने उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया। विजय के बाद गिदोन ने इसराइलियों से कहा, ऐसा कैसा हो सकता है, तुम लोग मुझे या मेरे बेटे को राजा बनाओ। वो गेहूं झाड़ने वापस चला गया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसने कहा, प्रभु, मैं नहीं कर सकता, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं पिछले 40 वर्षों से भेड़ों की रखवाली करता रहा हूं। मैं जाकर फिरौन को कहूं कि तेरे लोगों को जाने दे, तेरा क्या मतलब है? प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। हां, जिनको परमेश्वर प्रयोग करता है वे लोग साधारण ही होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर आपको प्रयोग करना चाहता है। जब मैं भेड़ों की रखवाली करता था, एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं जब वे अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, वे अपना काम छोड़कर प्रतीक्षा करते हैं कि परमेश्वर उनको सेवा कार्य में बुलाएगा। लेकिन नियमानुसार परमेश्वर यदि चाहेगा तो आपको कार्यों के मध्य से उठाकर ले जाएगा। मैं समझता हूं अपना कार्य छोड़ना और कहना, मैं परमेश्वर की सेवा करने जा रहा हूं, मैंने अपनी नौकरी पिछले सप्ताह छोड़ दी और अब मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, इस तरह के चलन से बहुत लोगों को विपदा से गुजरना पड़ा है। आप सच में भूख से मर सकते हो। जब मैं भेड़ों को चरा रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बोला। जब पतरस और यूहन्ना अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे, यीशु ने वहां से निकलते हुए उन्हें पुकारा, अपने जाल छोड़ो और मेरे पीछे आओ। परंतु जब तक प्रभु ना पुकारे अपने जाल छोड़कर आ, तब तक आप अपने जाल ना छोड़ना। मती चुंगी में बैठा हुआ कर वसूली कर रहा था और यीशु ने उसे पुकारा, मेरे पीछे हो ले। यहां ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु की बुलाहट तक वे सब अपना अपना काम कर रहे थे। आपको सब कुछ त्याग कर जंगल में बैठकर परमेश्वर की बुलाहट और दर्शन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं परमेश्वर वहीं से आपको बुला लेगा। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप परमेश्वर की वाणी सुनने को तैयार रहें। जाकर मेरे लोग इसराइल के लिए भविष्यवाणी कर। इसराइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया, वे देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे, तो भी परमेश्वर उन्हें मेरे लोग कहता है। परमेश्वर ने कब एक भी मनुष्य को जाने दिया है? कब परमेश्वर ने तुम्हें अस्वीकार किया? परमेश्वर ने कब कहा लो आमी मेरे लोग नहीं है? परमेश्वर उन्हें अपने लोग कहता है जबकि उन्होंने बहुत पहले परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था। परमेश्वर आज भी आपके जीवन को अपना कहता है, वो उन्हें जाने ना देगा। परमेश्वर आपको भी जाने ना देगा, उसने आपके जीवन को अपना कहा है। ये तो आनंद की बात है कि परमेश्वर हमको अपने लोग कहता है। मेरे बेटे, मेरी संतान, मुझे आनंद मिलता है जब परमेश्वर मुझे अपना कहता है।